आगे सबक देखिए भाई। वयजूजु तज़व्वुजुल अमति मुस्लिमतन कानत औ किताबियतन वकाल शाफिई रहिमहुल्लाहु तआला ला यजूजु लिल हुर्रि अन यतज़व्वज बि अमतिन किताबिया लिअन्न जवाज़ निकाहिल इमाई ज़रूरी इंदहू लिमा फीही मिन तअरीज़िल जुज़्ई अलर रिक़ وقد اندفعت الضرورة بالمسلمة ولهذا جعل طول الحرة مانعا منه। भाई गुज़श्ता सबक में साहिब कुदूरी ने आपको बतलाया था कि आका अपनी बांदी से निकाह नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि बांदी उसकी ममलूका है और आका मालिक है, और जब ये बीवी बनेगी तो बीवी तो मालिकन होती है, तो लिहाजा अब वो जो बांदी पहले ममलूका थी अब वो मालिकन भी बन गई, तो एक ही औरत ममलूका भी हो गई और मालिकन भी हो गई, और ये तो नहीं हो सकता। मालिकियत और ममलूकियत में मुनाफात है, जो मालिक है वो ममलूक नहीं और जो ममलूक है वो मालिक नहीं। मैंने बतलाया था कि मियां बीवी एक दूसरे पर हुकूक के मालिक होते हैं, बीवी जो है वो उसका हक है कि खावंद से नफका ले, इसी तरह खावंद पर बीवी का हक है कि वो बीवी को रिहाइश भी मुहैया करे, तो बीवी जो है वह खावंद पर हुकूक की मालिक होती है, इसी तरह खावंद भी बीवी पर हुकूक का मालिक होता है कि वो जब चाहे उसके साथ सोहबत कर सकता है और वो उसको घर से निकलने से मना कर सकता है वगैरह भाई। तो लिहाजा जब बांदी से निकाह करेगा तो बांदी तो है ममलूक का और अब वो क्या बन गई, मालिकन बन गई, यानी हुकूक की मालिक बन गई अपने खावंद पर। और मालिकियत और ममलूकियत में मुनाफात है, एक ही शख्स मालिक भी हो और ममलूक भी हो ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह अगर एक अमीर औरत है और उसका कोई गुलाम है, वो इस गुलाम के साथ निकाह करना चाहती है तो यह जायज नहीं है, इसलिए क्योंकि गुलाम उसका ममलूक है और जब निकाह कर लेगी तो वह उसका खावंद बन जाएगा और खावंद जो है बीवी पर मालिक होता है बहुत से हुकूक का। और मालिकियत और ममलूकियत एक दूसरे के मुनाफी है, एक ही शख्स में जमा नहीं हो सकते, तो लिहाजा इसलिए यह औरत अपने गुलाम से निकाह नहीं कर सकती। हां अगर निकाह करना चाहते हैं तो आका अपनी उस बांदी को आजाद कर दे, अब वो उसकी ममलूका न रही, अब निकाह करना चाहता है तो निकाह कर ले, या इसी तरह वो औरत अपने गुलाम से निकाह करना चाहती है तो उसको आजाद कर दे, अब वो उसका ममलूक न रहा, अब उसके साथ निकाह करना चाहती है तो निकाह कर सकती है। साहिबे हिदायत ने इसी बात को, इस दलील को इस अंदाज में जिक्र फरमाया था कि ये जो निकाह की शरीयत ने इजाजत दी है, इस वजह से कि इस निकाह की वजह से ऐसे फवायद हासिल होते हैं जो मियां और बीवी दोनों के दरमियान मुश्तरक होते हैं। निकाह की वजह से ऐसे फायदे हासिल होते हैं जो मियां बीवी के दरमियान मुश्तरक होते हैं, यानी दोनों उन फायदों के मालिक होते हैं, और जब ये बांदी या गुलाम से निकाह किया जाएगा तो ये तो इनके ममलूक हैं और ममलूक जो है वो मालिक नहीं हो सकता इन्हीं के ऊपर हुकूक का, तो ये ममलूक मालिक नहीं बन सकते। जब मालिक नहीं बन सकते तो उन मुनाफिया के अंदर शिरकत ही नहीं आई। भाई देखिए ना, एक फायदा हासिल हो रहा है, मैं और जैद मिलकर कारोबार कर रहे हैं, तो जब मिलकर कारोबार कर रहे हैं तो जो भी नफा आएगा उसमें हम दोनों शरीक होंगे, लेकिन अगर कोई रुकावट आ जाए कि जो माल आ रहा है जैद उसमें शरीक ही नहीं हो सकता, उसका मालिक ही नहीं बन सकता, तो शिरकत तो खत्म हो गई। बात समझ में आ गई? तो यहां पर भी निकाह की वजह से ऐसे फायदे हासिल होते हैं जिनमें मियां और बीवी दोनों शरीक होते हैं, लेकिन जब इनमें से एक ममलूक है तो वो उस फायदे का मालिक नहीं बनेगा, जब मालिक नहीं बनेगा तो फायदे के अंदर शिरकत नहीं आएगी। हालांकि निकाह की तो इजाजत ही शरीयत ने क्यों दी है कि इसमें फायदे में दोनों शरीक होते हैं। बात समझ में आ गई? तो जब दोनों फायदे के अंदर शरीक नहीं हो सकते तो यह निकाह भी जायज नहीं होगा। बात समझ में आ गई? और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि अहले किताब औरतों से निकाह जायज है भाई, और चाहे वो अहले किताब औरत आजाद औरत हो या बांदी, उसके साथ निकाह जायज है, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अहले किताब बांदी के साथ निकाह जायज नहीं है भाई। और नीज आपको यह भी बतलाया कि जो आतिश परस्त औरतें हैं या बुत परस्त औरतें हैं उनके साथ भी निकाह जायज नहीं है, और साबी जो हैं उनके बारे में इख्तिलाफ है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तहकीक के मुताबिक साबी जो हैं ये यहूदियों या ईसाइयों से ही निकलने वाला एक गुरोह और एक फिरका है जो इन्हीं से जुदा हुआ है और ये सितारों की ताजीम करते हैं, सितारों की इबादत नहीं करते, तो लिहाजा ये अहले किताब हैं। ये साबी जब अहले किताब हैं तो इनके साथ निकाह जायज है और इनका ज़बीहा भी हलाल है, जबकि साहिबैन की तहकीक के मुताबिक ये जो साबी हैं ये सितारों की तरफ सजदा ताजीम के तौर पर नहीं करते बल्कि इबादत के तौर पर करते हैं, ये सितारों को अपना माबूद समझते हैं, तो ये मुशरिक हुए और मुशरिका औरतों के साथ तो निकाह की इजाजत नहीं है और इसी तरह इनका फिर ज़बीहा भी हलाल नहीं है भाई। और उसके बाद साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि मुहरिम मर्द या मुहरिम औरत वो निकाह करना चाहते हैं तो निकाह जायज है, इसलिए क्योंकि निकाह इजाब और कबूल का नाम है, और जैसे मुहरिम मर्द या औरत बया या और आकद कर सकते हैं तो निकाह भी कर सकते हैं भाई। इसी तरह अगर कोई वली जो है जो हालत हराम में है वो अपनी किसी सगीर या सगीरा का निकाह करवाना चाहे तो हमारे नजदीक जायज है, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक जायज नहीं है भाई। और फिर वो दलील जिक्र करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला यनकिहुल मुहरिमु वला युनकिहु, मुहरिम ना तो निकाह कर सकता है और ना निकाह करवा सकता है, और मैंने बतलाया कि ये नफी है लेकिन ये नहीं के माना में है, और बाद औकात एक चीज से रोकना मकसूद हो तो वहां नहीं के बजाय नफी भी इस्तेमाल कर ली जाती है और नफी के अंदर ताकीद ज्यादा होती है, क्योंकि जब आप किसी चीज का हुक्म दें तो हो सकता है दूसरा आदमी इस पर अमल करे या अमल न करे, लेकिन जब आप नफी लाते हैं तो अब दूसरे को बतला देते हैं कि इस चीज की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई सूरत ही नहीं है इस चीज के करने की, तो लिहाजा जब नहीं के मकाम में नफी आ जाए तो इसमें ताकीद और जोर ज्यादा होता है। ये थी इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील, जबकि हमारे नजदीक के मुहरिम मर्द या औरत अपना निकाह कर सकते हैं, दलील इसकी यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया था और आप हालत एहराम में थे, और जो हदीस इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने जिक्र फरमाई उसके अंदर जो निकाह का लफ्ज आया हम उसको वती पर महमूल करते हैं, किस पर? वती पर। ला यनकिहुल मुहरिमु, कि मुहरिम वती नहीं कर सकता, वला युनकिहु, और न वती करवा सकता है यानी न वती पर कुदरत दे सकता है, तो मुहरिम खुद भी वती ना करे और दूसरे को भी वती की कुदरत ना दे भाई, ये माना है। या हम ये जवाब देते हैं कि इस हदीस के अंदर औलवियत की नफी की जा रही है कि मुहरिम निकाह नहीं कर सकता यानी उसका निकाह करना औला नहीं है, अफजल नहीं है, बात समझ में आ गई जी। अब आइए आज के सबक पर, कहते हैं वयजूजु तज़व्वुजुल अमति मुस्लिमतन कानत औ किताबिया, وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز للحر أن يتزوج بأمة كتابية لأن جواز النكاح الإماء ضروري عنده। भाई मसला ये कि हमारा और शवाफ़ी का इख्तिलाफ है भाई, हमारे नजदीक बांदी से निकाह जायज है चाहे वो बांदी मुसलमान हो चाहे अहले किताब हो, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुसलमान बांदी के साथ तो निकाह जायज है लेकिन अहले किताब बांदी के साथ निकाह जायज नहीं। वो फरमाते हैं कि ये जो बांदी के साथ शरीयत ने निकाह की इजाजत दी है वो जरूरत की वजह से दी है। किसकी वजह से? जरूरत की वजह से दी है। चुनांचे कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन लम यस्ततिअ मिनकुम तौला, और जो कोई तुम में से कुदरत नहीं रखता अय्यन के हल मुहसनातिल मुमिनाती, कि वो निकाह कर ले पाक दामन मुसलमान औरतों से। जो शख्स तुम लोगों में से कुदरत नहीं रखता कि वो मुसलमान पाक दामन औरत से निकाह कर ले फमिम्मा मलकत अयमानुकुम, तो फिर जिसके तुम्हारे दाहने हाथ मालिक हैं मिन फतयाति कुमुल मुमिनात, यानी तुम्हारी मोमिना बांदियां यानी तुम्हारी अहले ईमान बांदियां। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि तुम में से जो शख्स पाक दामन मोमिना औरत से निकाह की कुदरत नहीं रखता तो फिर वो मुसलमान बांदियों से निकाह कर ले। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि देखो बांदी से जो निकाह की इजाजत दी गई है वो जरूरत की बिना पर दी गई है कि जो शख्स आजाद औरत से निकाह की कुदरत नहीं रखता तो वो फिर बांदी से निकाह कर ले। वजह यह कि आजाद औरत का महर ज्यादा होता है, इसी तरह आजाद औरत का नफका भी ज्यादा होगा भाई, जबकि उसके मुकाबले में बांदी का महर कम होता है और नीज बांदी के अंदर नफका भी आजाद औरत जितना नहीं, बल्कि बांदी के अंदर अक्सर तो नफका उसका आका ही देता रहेगा, तो नफके के खर्चा भी नहीं है और महर भी थोड़ा है। तो जो मुसलमान, जो अहले ईमान वो मुसलमान औरत से निकाह की इस्तेताअत नहीं रखते, इतना माल और पैसा उनके पास नहीं है, गरीब हैं, तो फिर वो बांदियों से निकाह कर लें। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं देखा बांदियों से निकाह की इजाजत कब दी गई, जब किसी में आजाद औरत की इस्तेताअत न हो गई। मालूम हुआ जरूरत की बिना पर बांदियों के निकाह की इजाजत दी गई है और जरूरत मुसलमान बांदी से पूरी हो जाती है। निकाह ही करना है तो किससे अब कर लो, मुसलमान बांदी से कर लो, जरूरत पूरी हो गई, लिहाजा अहले किताब बांदी से निकाह की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि जाब्ता है कि जो चीज जरूरतन साबित हो वो जरूरत के बकदर ही साबित होती है। और जरूरत किसके जरिए पूरी हो गई, मुसलमान बांदी के जरिए पूरी हो गई जरूरत, निकाह करना चाहता था ना, आजाद औरत से नहीं कर सकता क्योंकि इतनी माली इस्तेताअत नहीं, तो अब किससे कर लो, मुसलमान बांदी से, जरूरत पूरी हो गई, लिहाजा अहले किताब बांदी से निकाह की इजाजत नहीं है। दलील समझ में आ गई, जबकि हमारे नजदीक नहीं, हमारे नजदीक अहले किताब बांदी से भी निकाह जायज है भाई। और नीज याद रखना, हमारे नजदीक इस्तेताअत के बावजूद भी अगर कोई शख्स बांदी से निकाह करना चाहे तो निकाह कर सकता है। एक शख्स माली तौर पर ठीक है, वो आजाद औरत से भी निकाह कर सकता है, लेकिन फिर भी वो किसी बांदी से निकाह करना चाहे तो कर सकता है, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक निकाह नहीं कर सकता। और नीज इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक बांदी का मुसलमान होना भी जरूरी है, जबकि हमारे नजदीक बांदी चाहे मुसलमान हो चाहे अहले किताब हो, दोनों से निकाह कर सकता है भाई। आगे तफसील आ रही है, देखते जाइए, मैं पूरी तफसील बयान करूंगा। तो कहते हैं वयजूजु तज़व्वुजुल अमती मुस्लिमतन कानत औ किताबियतन, और जायज है बांदी से निकाह करना मुसलमान हो बांदी या किताबिया हो। वकाल शाफिय रहमहुल्लाहु ला यजूजु लिल हुर्रि, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आजाद आदमी के लिए जायज नहीं है, आजाद आदमी के लिए जायज नहीं है, गुलाम के लिए वो इजाजत देते हैं, आगे चलकर वो मसला आएगा। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं ला यजूज़ु लिल हुर्रि, आजाद आदमी के लिए जायज नहीं है अन यतज़व्वज बिअम्मतिन किताबियतिन, के वो निकाह करे किताबिया बांदी से। लिअन्न जवाज़ निकाहिल इमाए ज़रूरीयुन इंदहू, इसलिए क्योंकि बांदियों से निकाह का जो जवाज है इमाए भाई, लिअन्न जवाज़ निकाहिल इमाए, इमा जमा है अमतुन की, बांदियां भाई। लिअन्ना जवाज़ निकाहिल इमाई, इसलिए क्योंकि बांदियों के निकाह का जायज होना जो है जरूरी युन, वो जरूरी है यानी जरूरत की वजह से है। इंदहु उनके नजदीक, लिमा फीहि मिन तारीज़िल जुज़्ई अला रिक़ी, इस वजह से कि इसके अंदर पेश करना है, अर्रज़ युअर्रिज़ु तारीज़ का माना है पेश करना, अल जुज जुज को अल रिक, रिक गुलामी को कहते हैं, कि इसके अंदर अपने जुज को गुलामी पर पेश करना है। याद रखो, याद रखो, बच्चा आजादी और गुलामी में मां के ताबे होता है, अगर मां आजाद तो बच्चा भी आजाद, और अगर मां बांदी तो बच्चा भी गुलाम या बांदी होगा। मसलन एक शख्स है, वो एक बांदी से निकाह करना चाहता है, अहनाफ के नजदीक इस्तेताअत के बावजूद कोई शख्स बांदी से निकाह करना चाहे तो कर सकता है, तो यह शख्स बांदी से निकाह कर सकता है। लेकिन याद रखना, इस शख्स की जो भी औलाद होगी वो इस बांदी के मालिक के गुलाम और बांदियां होंगे। खावन तो आजाद है लेकिन मां क्या है, बांदी, तो जिसकी यह बांदी है बच्चे भी उसी के गुलाम या बांदियां शुमार होंगे। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं कि बांदी के साथ जब कोई शख्स निकाह करता है तो वो अपने जुज को यानी अपनी औलाद को गुलामी पर पेश कर रहा है, अपनी औलाद को वो गुलाम बना रहा है, क्योंकि जो औलाद पैदा होगी वो सारी क्या होगी, गुलाम होगी। तो लिहाजा ये अपने जुज को, अपनी औलाद को गुलामी पर पेश करना है। लिहाजा कियास तो ये तकाजा करता है बांदी के साथ निकाह सिरे से आजाद के लिए जायज ही नहीं होना चाहिए। आजाद आदमी के लिए तो बांदी से निकाह सिरे से जायज ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अपने जुज को गुलाम बनाना है भाई, अपने जुज को गोया हलाकत में डाल रहा है, क्योंकि गुलाम जो है उसको तो किसी किस्म के तसर्रुफात का हक नहीं होता, वो तो जैसे एक बेजान चीज है, उसको बेचा जाता है, खरीदा जाता है भाई। तो गोया जब बांदी से कोई शख्स निकाह कर रहा है तो अपने ही जुज को गुलामी पर पेश कर रहा है, यानी हलाकत पर पेश कर रहा है, अपने जुज को हलाक कर रहा है गोया, क्योंकि आजादी के बगैर कोई जिंदगी नहीं भाई। तो लिहाजा कियास तो यह तकाजा करता है, अकल तो यह कहती है कि बांदी से निकाह जायज ही नहीं होना चाहिए, लेकिन शरीयत ने इजाजत दे दी जरूरत की वजह से, क्योंकि ज़ाब्ता क्या है, जरूरत तुबीहुल महजूरात, तो जरूरत की वजह से शरीयत ममनू चीजों को भी जायज करार दे देती है। तो यहां जरूरत की वजह से एक शख्स है, उसके पास माल नहीं है, वो आजाद औरत से निकाह नहीं कर सकता, बड़ा गरीब है, तो शरीयत ने कहा चलो अगर आजाद औरत से निकाह नहीं कर सकते तो फिर किससे निकाह कर लो, बांदी से निकाह कर लो। तो हासिल दलील क्या हुआ, उनकी दलील इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक बांदी से निकाह जायज ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें गुलामी पर अपने जुज को पेश करना है, लेकिन शरीयत ने इजाजत दी किस बिना पर, जरूरत की बिना पर। यह माना है देखिए, कहते हैं लिअन्ना जवाज़ा निकाहिल इमा जरूरी युन इंदहू, इसलिए क्योंकि बांदियों से निकाह का जायज होना यह जरूरत की बिना पर है इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक, लिमा फीही मिन तारीज़िल जुज़ अला रिक़, क्योंकि इसके अंदर अपने जुज को यानी अपनी औलाद को पेश करना है अला रिक़ गुलामी पर, तो यह जरूरत की बिना पर इजाजत दी गई है। वकदीन दफाती जरूरत बिल मुस्लिमती, और तहकीक जरूरत पूरी हो गई बिल मुस्लिमती मुसलमान बांदी के जरिए, जरूरत मुसलमान बांदी से पूरी हो गई, लिहाजा अहले किताब बांदी से निकाह की इजाजत नहीं होगी। वलिहादा जअला तौल अल-हुर्रति मानिअन मिन्हु, वलिहादा और इसी वजह से जाला इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने करार दिया है, जाला का क्या माना करना है, करार दिया है, वलिहादा और इसी वजह से जाला इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने करार दिया है तौल अल हुर्रती के आजाद औरत पर कुदरत होना मानिअन मिन्हु, ये मानिअ है बांदी से निकाह से। आजाद औरत पर जब कुदरत आपको हासिल है तो यह मान्या बन जाएगा, अब आप बांदी से निकाह नहीं कर सकते। फिर तर्जमा देख लीजिए, वलिहादा जअला तौल अल-हुर्रति मानिअन मिन्हु, और इसीलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने आजाद औरत पर कुदरत को मान्या करार दिया है इस बांदी से निकाह से। बात समझ में आ गई। वइंदन अल-जवाज़ मुतलकुन, और हमारे नजदीक ये जवाज मुतलक है, बांदियों से निकाह को जो शरीयत ने जायज करार दिया है यह इजाजत मुतलक है, इसमें बांदी के मुसलमान होने की कैद नहीं है भाई। तो बांदी जो भी हो, चाहे मुसलमान हो चाहे अहले किताब, दोनों से निकाह जायज है। वाइंदन अल जवाज मुतलकुन, और हमारे नजदीक बांदियों से जो निकाह को जायज करार दिया गया है, मुतलकुन यह मुतलक है, लि इतलाक अल मुक्तजी, क्योंकि मुक्तजी मुतलक है, मुक्तजी तकाजा करने वाला, तकाजा
करने
वाला, यानी वो आयात वो दलीलें जो बांदी से निकाह के जवाज का तकाजा करती हैं, वो आयतें या अहादीस जो बांदी से निकाह के जवाज का तकाजा करती हैं कि बांदी से निकाह जायज होना चाहिए, वो दलीलें मुतलक हैं, उनमें बांदी के मुसलमान होने की कैद मौजूद नहीं है भाई। और वो क्या दलीलें हैं, देखिए आपके हाशिए में दी हुई है दलीलें भाई, ये इतलाक मुक्तजी पर हाशिया दिया होगा, कहते हैं वह हुआ कौलहू ताला, और वह अल्लाह ताला का ये कौल है माता बलकुम मिनन निसा फन के हो माता बलकुम मिनन निसा, कि तुम लोग निकाह कर लो वो औरतें जो तुम्हें पसंद हैं उनसे। अब देखो निसा का लफ्ज आम है, निसा निसा औरतों को कहते हैं, बांदी भी तो एक औरत है भाई, तो वो भी इसके अंदर दाखिल हो गई, चाहे वो मुसलमान हो चाहे अहले किताब हो। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं वह उहिल्ला लकुम मा वरा अज़ालिकुम, और हलाल कर दी गई तुम्हारे लिए इनके अलावा, कुरान में अल्लाह ताला ने उन औरतों का जिक्र फरमाया जिनसे निकाह हराम है, वह हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, भाई उन औरतों को अल्लाह ने जिक्र फरमाया जिनसे निकाह हराम है, और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनके अलावा औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं, और इनके अलावा के अंदर बांदियां भी आ गईं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे अहले किताब हो, सब इसके अंदर दाखिल हैं। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वाइन दानल जवाज मुतलकुन, और हमारे नजदीक बांदी से ये जो निकाह का जायज होना है ये मुतलक है, इसमें किसी किस्म की कैद नहीं। ले इतलाक इल मुक्तजी, इस वजह से कि मुक्तजी मुतलक है, यानी वो दलीलें जो बांदी से निकाह के जवाज का तकाजा करती हैं, जिनसे क्या पता चलता है कि बांदी से निकाह जायज है, वो मुतलक हैं, उनके अंदर किसी किस्म की कैद मौजूद नहीं है कि अहले किताब बांदी हो तो उसे निकाह नहीं कर सकते, ये कैद किसी जगह मौजूद नहीं है। भाई तफसील कलाम याद रखो। भाई देखिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने दलील जिक्र फरमाई थी, वो क्या फरमाते हैं कि मुसलमान बांदी से निकाह जायज है, अहले किताब बांदी से निकाह जायज नहीं। दलील उनकी आयत मैंने जिक्र कर दी, वमन लम यस्ततिअ मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मुमिनात, और जो शख्स तुम में से कुदरत नहीं रखता कि वो पाकदामन मुसलमान औरतों से निकाह कर ले, फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनात, तो फिर जिसके तुम्हारे दाएं हाथ मालिक हैं यानी तुम्हारी मोमिना बांदियां, उनसे क्या कर सकता है, निकाह कर सकता है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि देखो आयत में क्या आया, जो तुम में से आजाद औरत से निकाह की इस्तेताअत नहीं रखता, यह शर्त जिक्र हुई है बांदी से निकाह के लिए, और जब किसी हुक्म को किसी शर्त के साथ मुअल्लक कर दिया जाए तो यह तकाजा करता है कि जहां शर्त होगी वहां वो हुक्म आएगा, जहां शर्त नहीं वहां हुक्म भी नहीं। बांदी से निकाह के लिए क्या शर्त जिक्र की शरीयत ने, जो तुम में से आजाद औरत से निकाह नहीं कर सकता, मालूम हुआ जिसमें इस्तेताअत नहीं होगी उसके लिए बांदी से निकाह जायज होगा, मालूम हुआ जिसमें आजाद औरत से निकाह की इस्तेताअत मौजूद है उसके लिए बांदी से निकाह जायज नहीं है। हम उसका जवाब देते हैं, हम उसका जवाब देते हैं कि हमारे नजदीक मफहूम मुखालिफ मुतबर नहीं। याद रखो अहनाफ का बड़ा कीमती जाब्ता है भाई, इंद अल अहनाफ मफहूम मुखालिफ मुतबर नहीं। आयत में क्या जिक्र हुआ कि जो तुम में से आजाद औरत की इस्तेताअत नहीं रखता वो किससे निकाह कर ले, बांदी से निकाह कर ले। इसका मफहूम मुखालिफ ये बनता है कि जो इस्तेताअत रखता है वो बांदी से निकाह नहीं कर सकता, लेकिन ये हमारे नजदीक मुतबर नहीं, हमारे नजदीक मफहूम मुखालिफ मुतबर नहीं। हम कहते हैं आयत में सिर्फ इतना जिक्र किया गया कि जिसमें इस्तेताअत नहीं है वो बांदी से निकाह कर ले, जिनमें इस्तेताअत है उनको तो आयत में जिक्र ही नहीं किया गया। हम क्या कहते हैं जिनमें इस्तेताअत है उनके बारे में आयत खामोश है, सिर्फ उनके बारे में आयत ने बतलाया जिनमें इस्तेताअत नहीं है वो क्या कर सकते हैं, बांदी से निकाह कर सकते हैं। तो जिनके अंदर इस्तेताअत है उनके बारे में आयत खामोश है। अहनाफ मफहूम मुखालिफ लेने के बजाय फिर और नुसूस में गौर करते हैं, दूसरी जगह देखते हैं कि इसका क्या हुक्म है। जिस शख्स में आजाद औरत से निकाह की कुदरत नहीं है उसके लिए तो बांदी से निकाह जायज है, और जिसके अंदर कुदरत हो उसके लिए जायज है या जायज नहीं उसके लिए फिर हम मफहूम मुखालिफ नहीं निकालेंगे बल्कि हम और नुसूस में गौर करेंगे। चुनांचे हमने और नुसूस में गौर किया तो वहां से पता चला कि जिसमें कुदरत हो उसके लिए भी बांदी से निकाह जायज है। मसलन कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं, फन के हो माताब लकुम मिनन निसाई, बस तुम निकाह करो उन औरतों से जो तुम्हें पसंद हो। अब इसमें निसा के साथ निकाह की इजाजत दी गई और बांदियां भी तो निसा हैं, वो भी तो औरतें हैं, तो वो भी इसके अंदर दाखिल हैं। मालूम हुआ जिसमें कुदरत हो वो भी बांदी से निकाह कर सकता है क्योंकि यहां पर कोई कैद नहीं है कुदरत और आदम कुदरत की। और नीज दूसरी जगह अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वह उहिल लकुम मा वरा अदालिकुम, पीछे मुहर्रमात का जिक्र था, आगे अल्लाह फरमाते हैं वह उहिल लकुम मा वरा अजालिकुम, इनके अलावा जो औरतें हैं वो तुम्हारे लिए हलाल हैं, और इनके अलावा औरतों में बांदियां भी आ गईं, वो भी आ गई, मालूम हो वो भी क्या है, हलाल हैं, इंसान उनसे निकाह कर सकता है। तो हासिल कलाम क्या हुआ कि इंदल अहनाफ मफहूम मुखालिफ मोतबर नहीं है। अहनाफ मफहूम मुखालिफ नहीं लेते बल्कि बाकियों के हुक्म का पता चलाने के लिए अहनाफ और नुसूस में गौर करते हैं कि और जगह देखते हैं कि जिसका जिक्र नहीं किया गया उसका क्या हुक्म है। भाई बात समझ में आ गई। तो हमारे नजदीक मफहूम मुखालिफ मोतबर नहीं है जबकि शवाफिया के नजदीक मफहूम मुखालिफ मोतबर है। वो कहते हैं जब एक हुक्म को एक शर्त के साथ मुअल्लक कर दिया जाए तो यह तकाजा करता है कि जहां वो शर्त होगी तो वह हुक्म होगा, जहां शर्त नहीं तो हुक्म भी नहीं। जबकि हम कहते हैं नहीं, हमारे नजदीक मफहूम मुखालिफ मोतबर नहीं है। भाई हम और आयात में गौर करते हैं वो मुतलक है, वहां इस किस्म की कोई कैद मौजूद नहीं है। नीज इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि देखिए इसी आयत में है, फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनात, जिनके तुम्हारे दाहने हाथ मालिक हैं यानी कि तुम्हारी मोमिना बांदियां। यहां बांदियों के साथ मोमिना की कैद मौजूद है, मालूम है मोमिना बांदियों के साथ निकाह जायज है, गैर मोमिना के साथ निकाह जायज नहीं है। भाई तो हम कहते हैं कि मफहूम मुखालिफ हमारे नजदीक मोतबर नहीं। इस आयत में सिर्फ इतना जिक्र है कि मोमिना बांदी से निकाह कर सकते हो, अहले किताब से कर सकते हो या नहीं कर सकते उस बारे में यह आयत खामोश है। ये यूं कह हम यूं कहते हैं कि हर कैद एहतराजी नहीं होती, ये कैद एहतराजी नहीं है, ये कैद इत्तेफाकी है। ये क्या है? कैद इत्तेफाकी है, यानी यहां अवलवियत और अफजलियत को बयान किया जा रहा है कि औला यह है कि बांदी से निकाह करना ही है तो किससे कर लो, मोमिना बांदी से कर लो, यह औला है। तो सिफत को बाज़ औकात किस लिए जिक्र किया जाता है? अवलवियत और अफजलियत को बयान करने के लिए। जैसे अभी गुज़श्ता सबक में आया था, वल मुहसनात मिनल्लदीन उतुल किताब, वो जो पाकदामन औरतें हैं अहले किताब में से, और मैंने आपको बतलाया था कोई अहले किताब बदकार औरत है उससे कोई मुसलमान निकाह करना चाहता है तो उससे भी निकाह बिल इत्तेफाक मुनाकिद हो जाएगा। भाई हालांकि आयत में तो क्या जिक्र है? मोहसनात पाकदामन औरत, लेकिन मैंने बतलाया ये कैद किस लिए जिक्र है? या तो आदतन ऐसा होता है कि इंसान पाकदामन औरत से निकाह करता है इसलिए यह जिक्र की गई ये कैद, या ये अवलवियत को बतलाने के लिए कि औला यह है निकाह करना ही है, अहले किताब है तो फिर कौन सी औरत होनी चाहिए? पाकदामन होनी चाहिए। तो यहां पर भी जो मोमिनात की कैद आई, मिन फतयाति कुमुल मोमिनात, यहां भी जो मोमिनात की कैद आई ये अवलवियत को बयान करने के लिए है। बात समझ में आ गई। तो हासिले कलाम क्या हुआ? इमाम शाफी रहमतुल्लाह के दो जाब्ते मैंने जिक्र कर दिए, उनके नजदीक जब एक हुक्म की तख्सीस आ जाए एक वसफ के साथ, एक हुक्म की तख्सीस आ जाए एक वसफ के साथ, तो जहां वो वसफ नहीं होगा वहां वो हुक्म भी नहीं होगा, यानी मादा से उसकी नफी हो जाएगी। अल्लाह ताला ने निकाह की इजाजत दी है किन बांदियों से? मोमिना बांदियों से, तो मोमिना की कैद होगी तो निकाह की भी इजाजत होगी, और जहां मोमिना की कैद नहीं बांदी के अंदर वहां निकाह की भी इजाजत नहीं होगी। नीस अल्लाह ताला ने इस बांदी के साथ निकाह की इजाजत को मुअल्लक फरमाया है आजाद औरत से निकाह की आदम कुदरत पर। जो शख्स आजाद औरत से निकाह नहीं कर सकता वो क्या कर ले? बांदी से निकाह कर ले। हम क्या जवाब देते हैं? हम जवाब देते हैं कि मफहूम मुखालिफ हमारे नजदीक मोतबर नहीं। इस आयत में उन लोगों का तो जिक्र है जिनमें इस्तेताअत ना हो, जिनमें इस्तेताअत हो उनका इस आयत में कोई जिक्र नहीं है, उनके बारे में यह आयत खामोश है। और हमने दीगर आयत के अंदर गौर किया वो सारी मुतलक हैं, वहां किसी किस्म की कोई कैद जिक्र नहीं। मालूम हुआ कुदरत के बावजूद भी कोई शख्स बांदी से निकाह करना चाहता है निकाह कर सकता है, और बांदी मुसलमान ना हो अहले किताब हो तब भी मुसलमान उससे निकाह कर सकता है, क्योंकि ये जो वसफ है हमारे नजदीक वसफ के जिक्र से हुक्म में तख्सीस नहीं आती बल्कि वसफ को कभी कभार औलवियत को बयान करने के लिए भी जिक्र कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वईंदा नल जवाज मुतलकुन, हमारे नजदीक बांदियों से निकाह का जायज होना यह मुतलक है, लि इतलाक अल मुक्तजी, इसलिए क्योंकि वो आयतें जो बांदी से निकाह के जवाज का तकाजा करती हैं। ये तर्जमा याद रखना, लि इतलाक अल मुक्तजी, के वो दलील जो बांदी से निकाह के जवाज का तकाजा करती हैं, जिनसे क्या पता चलता है कि बांदी से निकाह जायज है, वो मुतलक हैं, उनके अंदर किसी किस्म की कैद मौजूद नहीं है कि अहले किताब बांदी हो तो उसे निकाह नहीं कर सकते, ये कैद किसी जगह मौजूद नहीं है भाई। आगे देखिए, वफीहिम तिनाउन अन तहसील जुज इल हुर्री ला इरकाकुहू। यहां से इमाम शाफी रहमतुल्लाह के कियास का जवाब दे रहे हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि कियास को यह तकाजा करता है कि बांदी से निकाह जायज ही नहीं होना चाहिए, अकल तो यह कहती है, क्यों? क्योंकि इसमें अपने जुज को गुलामी पर पेश करना है। तो उसका जवाब दे रहे हैं साहिब हिदाया कि यूं न कहें जुज को गुलामी पर पेश करना है, बांदी से निकाह करोगे तो गोया अपने जुज को गुलामी पर, अपनी औलाद को गुलामी पर पेश करना है। यूं न कहो, बल्कि यूं कहो कि यह शख्स आजाद औलाद के हासिल करने से रुक गया, आजाद औलाद के, यह शख्स आजाद औलाद के हासिल करने से रुक गया है। भाई इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया था कि अपने जुज को गुलामी पर पेश कर रहा है, हम कह रहे हैं कि यूं न कहें अपने जुज को गुलामी पर पेश कर रहा है, इसलिए क्योंकि अभी तो जुज ही नहीं है, अभी तो औलाद ही नहीं हुई, औलाद हो तो फिर हम कहेंगे ये औलाद को किस पर पेश कर रहा है, जुज पर पेश कर रहा है, बल्कि यूं कहें कि ये जुज हुर आजाद जुज, जुज हुर की तहसील से रुक रहा है यह शख्स, जुज हुर आजाद, यूं कर यह शख्स आजाद जुज की तहसील से रुक रहा है, और ये शख्स सिरे से औलाद के हुसूल से ही रुक जाए, इसकी भी शरीयत ने उसको इजाजत दी है। तो जब औलाद से रुकने की इसको इजाजत है तो वसफ से रुकने की बतरीके औला इसको इजाजत होगी। भाई एक सूरत ये है ना, औलाद से ही इंसान रुक जाए, निकाह तो कर लिया है लेकिन कोई ऐसा तरीका इख्तियार कर दे कि जिससे औलाद ही आगे ना हो, तो शरीयत ने उसको इजाजत दी है, वो कर सकता है। बल्कि एक शख्स एक बूढ़ी औरत से निकाह करता है जिससे आगे औलाद की कोई उम्मीद ही नहीं, तो देखो ये शख्स भी औलाद की तहसील से रुक गया। या एक शख्स एक ऐसी औरत से निकाह करता है जो बांझ है, जो औलाद को जन्म देने के काबिल ही नहीं भाई, किसी मरज वगैरह की वजह से, तो वो भी जायज है। तो जब औलाद के हुसूल से रुकना इस शख्स के लिए जायज है, तो आजाद औलाद यानी वसफ आजाद के वसफ के हुसूल से रुकना बतरीके औला इसके लिए जायज होगा। दलील भी समझ में आई कि नहीं? इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया था कि अपने जुज को गुलामी पर पेश करना है, हम कहते हैं नहीं अभी औलाद ही नहीं तो गुलामी पर पेश करने का क्या माना, बल्कि यह शख्स आजाद जुज की तहसील से रुक रहा है, और जब यह शख्स औलाद की तहसील से रुक सकता है तो आजाद औलाद की तहसील से बतरीके औला रुक सकता है। भाई देखिए साहिब हिदायत इसको और बेहतरीन अल्फाज में बयान करेंगे, कहते हैं वफी हिमतिनाउन अन तहसील जुज इल हुर्री, और इसके अंदर यानी ये जो बांदी के साथ निकाह करेगा इसके अंदर इम्तिनाउन बाज रहना है, रुक जाना है, अन तहसील जुज इल हुर्री आजाद जुज के हासिल करने से, बांदी से निकाह करेगा तो आजाद जुज के हासिल करने से रुक जाएगा, ला इरकाकुहू इसमें जुज को गुलाम बनाना नहीं है। यूं न कहें कि जुज को गुलामी पर पेश कर रहा है, जुज को गुलाम बना रहा है, नहीं यूं न कहें जुज को गुलाम बना रहा है, बल्कि ये आजाद औलाद के हुसूल से रुक रहा है भाई। वलहू अल्लाह युहस्सिल अल असला फयकून लहू अल्लाह युहस्सिल अल वस्फा, और इस शख्स के लिए जायज है कि यह असल को ही हासिल न करे, औलाद ही सिरे से हासिल न करे, बांझ औरत से निकाह कर ले या कोई ऐसा तरीका इख्तियार करे जिससे आगे औलाद ही ना हो। देखो एक है असल एक है वसफ, औलाद क्या है असल, और औलाद के अंदर आजादी यह है औलाद का वसफ, तवज्जो है। तो जब इस शख्स के लिए असल यानी औलाद से रुकना जायज है तो उसके वसफ आजादी से रुकना बतरीके औला इसके लिए जायज होगा। ये माना है वलहू अल्लाह युहस्सिल अल असला, और इस शख्स के लिए जायज है कि वो असल यानी औलाद ही को हासिल न करे, फयकून लहू अल्लाह युहस्सिल अल वस्फा, तो इसके लिए यह भी जायज होगा कि वसफ यानी आजादी को भी हासिल न करे। दलील समझ में आ गई। आगे देखिए वला यतज़व्वजु अमतन अला हुर्रतिन, और कोई शख्स निकाह नहीं कर सकता बांदी से अला हुर्रतिन आजाद औरत पर। भाई इधर देखिए हमारे नजदीक जिसमें इस्तेताअत हो वो भी बांदी से निकाह कर सकता है, और नीज मुसलमान बांदी से भी निकाह कर सकता है और अहले किताब बांदी से भी निकाह कर सकता है। हां एक शर्त है, इस शख्स के आकद में पहले से कोई आजाद औरत नहीं होनी चाहिए, यानी इसके आकद में अगर आजाद औरत मौजूद है और उसके बाद वो एक बांदी से निकाह करना चाहता है, नहीं इसकी इजाजत नहीं है भाई। वजह यह कि जो सौकन होती है ये औरत के लिए बीवी के लिए तकलीफ का बाइस होती है भाई, और फिर अगर ये सौकन बांदी भी हो फिर तो ये उसके लिए बहुत बड़े ऐब और ताने का बाइस बन जाएगी। आजाद औरत उसका तो बड़ा ऊंचा मकाम है भाई, उसको तो अल्लाह ने बड़ा शरफ बख्शा है, वो आजाद है, उसको इख्तियारात अल्लाह ताला ने दिए हैं, वो साहिब तसर्रुफ है, जबकि बांदी जो है उसके तो कोई तसर्रुफात का इख्तियार नहीं होता। मैंने बताया वो तो बेजान चीज की तरह है, उसको बेचा जाता है खरीदा जाता है। तो आजाद औरत की बड़ी ऊंची शान है, तो आजाद औरत के ऊपर जब सौकन लाएंगे उससे उसको तकलीफ होगी, लेकिन अगर बांदी लेकर आएंगे ये तो बहुत ही ज्यादा उसके लिए तकलीफ का बाइस होगी। यानी आपने उसकी इंतहा दर्जे की एहानत कर दी कि उस जैसी आला औरत के होते हुए आप उसके ऊपर एक अदना सी औरत को ले आए, ये तो उसके लिए ऐब और तानों का बाइस बनेगा। सारी औरतें उसको ताने देंगी, तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारे ऊपर तो अखावंत बांदी को ले आया। एक बात समझ में आ गई। तो लिहाजा इसलिए शरीयत ने इजाजत नहीं दी कि आजाद औरत का मकाम बड़ा ऊंचा है, वो जब तुम्हारे निकाह में है तो उसके ऊपर तुम बांदी के साथ निकाह नहीं कर सकते। हां अगर तुम्हारे निकाह में कोई औरत नहीं है तो फिर तुम चाहे आजाद से निकाह करो चाहे बांदी से निकाह करो। तो कहते हैं वला यतसव्वजु अमतन अला हुर्रतिन, और निकाह नहीं कर सकता कोई शख्स किसी बांदी से अला हुर्रतिन आजाद औरत के ऊपर, यानी कि वो पहले से निकाह में मौजूद हो। लिकौलिही अलैहिस्सलाम, हुजूर अलैहिस्सलाम के इस कौल की वजह से आपने फरमाया ला तुनकहुल अमतु अलल हुर्रतिन, निकाह नहीं किया जा सकता बांदी से अला हुर्रतिन आजाद औरत पर, बांदी से आजाद औरत पर निकाह नहीं किया जा सकता। अब देखो यह हदीस मुतलक है, यह हदीस मुतलक है, इसमें किसी किस्म की कैद नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह का आगे मजहब जिक्र फरमाएंगे, वो फरमाते हैं कि गुलाम ऐसा कर सकता है, गुलाम के आकद में आजाद औरत है भाई, गुलाम को भी तो निकाह की इजाजत है। अब एक आजाद औरत तैयार हो गई, ठीक है मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लेती हूं, और उस गुलाम के आका ने इजाजत दे दी कि हां भाई तुम इस औरत से निकाह करना चाहो तो कर सकते हो। अब इस गुलाम ने इस आजाद औरत से निकाह कर लिया, अब वो गुलाम एक और बांदी से निकाह करना चाहता है जी। तो इसके निकाह में आजाद औरत मौजूद है इंदल अहनाफ, अब इसके लिए बांदी से निकाह की गुंजाइश नहीं है। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहीं, ये गुलाम है इसके लिए बांदी से निकाह जायज है, आजाद के होने के बावजूद इसके लिए बांदी से निकाह जायज है भाई। वो आयत इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील थी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं, आयत के अंदर क्या जिक्र था कि जो तुम में से आजाद औरत की कुदरत नहीं रखता वो बांदी से निकाह कर ले। मालूम हुआ बांदी से निकाह जरूरत की वजह से है, और कब इजाजत दी शरीयत ने, जब इसको आजाद औरत से निकाह पर कुदरत ना हो, और कुदरत का होना या ना होना इसका तसव्वुर आजाद आदमी में हो सकता है, गुलाम में नहीं। आजाद आदमी के पास माल थोड़ा होगा या ज्यादा होगा, कुदरत होगी या कुदरत नहीं होगी। गुलाम तो किसी चीज का मालिक होता ही नहीं, उसके पास तो एक रुपया भी है वो उसके आका का है, वो उसका मालिक ही नहीं है। तो गुलाम के अंदर कुदरत या आदम कुदरत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। लिहाजा बांदी से जो निकाह की इजाजत दी गई आजाद आदमी को वो जरूरत की वजह से है, लेकिन गुलाम के लिए वैसे ही जायज है, गुलाम के लिए वैसे ही जायज है, क्योंकि यह हां कुदरत और आदम कुदरत का सवाल ही पैदा नहीं होता। और नीस बांदी के अंदर तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि इंसान अपने जुज को गुलामी पर पेश कर रहा है, अपनी औलाद को गुलामी पर पेश कर रहा है, इसलिए उसकी इजाजत नहीं है, जरूरत की वजह से इजाजत है। जबकि गुलाम के अंदर तो यह मान्या भी मौजूद नहीं है, गुलाम तो खुद ही सारा गुलाम है जी। तो जुज को गुलामी पर पेश करने का क्या माना, जब खुद गुलाम है तो जुज यकीनन क्या होगा, गुलाम ही होगा। बात समझ में आ रही है। लिहाजा गुलाम के बारे में वो फरमाते हैं कि गुलाम जो है वो बांदी से निकाह कर सकता है, और अगर उसके आकद में पहले से आजाद औरत हो फिर भी वो बांदी से निकाह कर सकता है। तो देखिए कहते हैं लिकौलिही अलैहिस्सलाम, हमारी दलील हुजूर अलैहिस्सलाम का यह कौल है, ला तुनकहुल अमतु अलल हुर्रति, निकाह नहीं किया जा सकता बांदी से, अलल हुर्रति आजाद औरत पर, वह हुआ भी इतलाकी हुज्जतुन अलल शाफिई रहिमहुल्लाहु ताला, और यह हदीस अपने इतलाक की वजह से हुज्जत है इमाम शाफी रहमतुल्लाह के खिलाफ। यह मुतलक है, इसमें कोई कैद नहीं है कि अगर आजाद हो तो वो निकाह नहीं कर सकता और गुलाम हो तो वो निकाह कर सकता है, नहीं, मुतलक है भाई, चाहे गुलाम हो आजाद हो, सबका यही हुक्म है कि आजाद औरत पर बांदी से निकाह नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं वह हुआ भी इतलाक ही हुज्जतुन अले शाफी रहमतुल्लाह, और यह हदीस अपने इतलाक की वजह से हुज्जत है इमाम शाफी रहमतुल्लाह के खिलाफ, फी तजवीज ज़ालिका लिल अब्दी, इसको गुलाम के अंदर जायज करार देने में, जब वजह युजवीज तजवीज का क्या माना, जायज करार देना, फी तजवीज ज़ालिका, इसको जायज करार देने में, लिल अब्दी गुलाम के लिए, इमाम शाफी रहमतुल्लाह गुलाम के लिए यह जायज करार देते हैं कि वो आजाद औरत के होने के बावजूद बांदी से निकाह कर सकता है, लेकिन हमने कहा नहीं हदीस मुतलक है भाई। आगे देखिए वाला मालिक रहमहुल्लाह, और यही हदीस अपने इतलाक की वजह से इमाम मालिक रहमतुल्लाह के खिलाफ भी दलील है, फी तजवीज ही बी रिजा इल हुर्रति, इधर देखिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आजाद औरत के ऊपर बांदी का लाना मना है, आजाद औरत पहले से निकाह में है तो उसके ऊपर बांदी से निकाह मना है, और ये जो मुमानियत है ये इस आजाद औरत के हक की वजह से है जी। ये किसका हक है, ये आजाद औरत का हक है, वो अपने ऊपर बांदी को न आने दे, लिहाजा ये जो शरीयत ने मना किया है ये इस पहली बीवी के हक की वजह से है। अब अगर वो इजाजत दे दे तो फिर निकाह कर सकता है बांदी से भी, अगर बीवी इजाजत दे दे तो फिर बांदी से भी निकाह कर सकता है। हम कहते हैं नहीं, इस हदीस के अंदर मुतलक जिक्र है कि आजाद औरत पर बांदी को नहीं ला सकता भाई, इसमें कोई जिक्र नहीं है कि अगर वो इजाजत दे दे तो फिर ला सकते हो, इजाजत ना दे तो नहीं ला सकते, तो यह हदीस मुतलक है, इसमें किसी किस्म की कोई इजाजत की कैद नहीं है। तो कहते हैं वाला मालिक रहमहुल्लाह ताला, और यह हदीस इमाम मालिक रहमतुल्लाह के खिलाफ भी हुज्जत है, फी तजवीज ही, इसमें कि वो जायज करार देते हैं, भी रिजा इल हुर्रति, आजाद औरत की रजामंदी से, वो आजाद औरत की रजामंदी से इसको जायज करार देते हैं, उनके खिलाफ भी यह हदीस हुज्जत है। वली अन्न लिर्रिक असरन फी तंसीफ निअमति, ये तो अकली दलील जिक्र कर दी, और अब आगे साहिबे हिदाया अकली दलील यानी कियास जिक्र फरमा रहे हैं। कियास किसको कहते हैं, अकली दलील, कि हदीस से भी पता चला इस मसले का, हदीस में भी इसी तरह है और अकल भी यही कहती है, तो इसको ये कियास है भाई। बात समझ में आ गई, दलील समझ लो भाई, दलील समझ लो। साहिबे हिदाया आपको बतलाएंगे कि ये जो गुलामी है, गुलामी, इसकी वजह से अहकाम शरीयत के अंदर तंसीफ आ जाती है, अहकाम शरीयत में तंसीफ आ जाती है, वो अहकाम निसफ हो जाते हैं यानी उनमें कमी आ जाती है। मसलन देखो, आजाद औरत की इद्दत तीन हैज है और बांदी की इद्दत दो हैज है, क्योंकि बांदी की इद्दत निसफ होनी चाहिए, तो होना तो डेढ़ हैज चाहिए था, लेकिन हैज की तकसीम नहीं हो सकती, पता ही नहीं चल सकता किस वक्त आधा हुआ है और किस वक्त आधा नहीं हुआ, तो लिहाजा उस आधे हैज को भी पूरा शुमार किया गया, तो दो हैज, आजाद औरत की इद्दत तीन हैज और बांदी की इद्दत दो हैज। इसी तरह आजाद औरत की तीन तलाकें होती हैं और बांदी की दो तलाकें हैं, होनी तो डेढ़ तलाक चाहिए थी, लेकिन तलाक की तंसीफ नहीं हो सकती, एक तलाक को आप आधा कर सकते हैं, नहीं, तलाक का लफ्ज़ बोलेंगे तो पूरी ही तलाक होगी, आधी नहीं हो सकती, तो लिहाजा यहां पर भी डेढ़ तलाक चूंकि मुमकिन नहीं था तो दो तलाक पूरी कर दी गई। तो बांदी की तलाकें कितनी है, ज्यादा से ज्यादा दो, और आजाद औरत की तीन। इसी तरह सजाएं हैं भाई, सजाएं, सजाओं के अंदर भी तंसीफ है, जहां आजाद औरत पर जिना की वजह से 100 कोड़े आएंगे, हद जिना क्या है, 100 कोड़े, आजाद औरत या आजाद मर्द है गैर शादीशुदा, वो जिना कर लें तो 100 कोड़े लगाए जाएंगे, लेकिन अगर गुलाम या बांदी ये जुर्म कर लें तो फिर उनको 50 कोड़े लगाए जाएंगे। तो सजाओं के अंदर भी तंसीफ आ गई, इसी तरह इनामात के अंदर भी तंसीफ आ जाती है। जैसे आजाद आदमी 4 निकाह कर सकता है, कितने, चार, लेकिन गुलाम याद रखो दो निकाह कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, एक वक्त में दो औरतें उसके निकाह में हो सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं। जबकि आजाद आदमी के निकाह में बैक वक्त ज्यादा से ज्यादा चार औरतें हो सकती हैं। तो मालूम हुआ गुलामी की वजह से अहकाम में तंसीफ होती है, तो लिहाजा ये जो बांदी से एक आदमी निकाह करना चाहता है, बांदी महल्ले निकाह है, बांदी क्या है, महल्ले निकाह है या नहीं, शरीयत ने इजाजत दी है या नहीं कि इसे निकाह कर सकते हो, जिसे निकाह कर सकते हो वो महल्ले निकाह है, तो बांदी क्या है, महल्ले निकाह। और महल्ले निकाह इसका होना ये इसके लिए इनाम है, अगर शरीयत मना कर देती तो इससे निकाह ही ना होता, लेकिन शरीयत ने इजाजत दे दी बांदी से भी क्या कर सकते हो निकाह, मालूम अब बांदी भी महल्ले निकाह है, और इसका महल्ले निकाह होना इस पर शरीयत का इनाम है। क्या है, शरीयत का इनाम है। जैसे आम औरत जो है उसके साथ शरीयत ने निकाह की इजाजत दी है तो उस पर शरीयत का इनाम है, वो क्या है, महल्ले निकाह है। तो जैसे आजाद औरत महल्ले निकाह, इसी तरह बांदी भी महल्ले निकाह, लेकिन गुलामी की वजह से इस इनाम में तंसीफ हो जाएगी, ये इनाम आधा हो जाएगा। आजाद औरत जो है उससे तो आप हर वक्त निकाह कर सकते हो, चाहे आपके अकद में पहले कोई आजाद औरत हो या ना हो। यानी दो हालतें हैं, एक है हालत इनफिराद और एक है हालत इज्तिमा। हालत इनफिराद यानी अकेली, एक ही आजाद औरत से आप निकाह कर रहे हैं तो आप निकाह कर सकते हैं भाई, तवज्जो है। या एक औरत या दो औरतें पहले से आपके आकद में मौजूद हैं, आप एक और आजाद औरत से निकाह करना चाहते हो तो भी जायज है, यानी यह हालत इज्तिमा हो जाएगी। ये औरत क्या हो रही है, पहली औरतों के साथ जमा हो रही है आपके निकाह में भाई। तो जैसे हालत इनफिराद के अंदर आजाद औरत से निकाह जायज है, इसी तरह हालत इज्तिमा में भी आजाद औरत से निकाह जायज है। तो दो हालतें हो गई, आजाद औरत की कितनी हालतें, दो, या हालत इनफिराद में निकाह हो रहा होगा या हालत इज्तिमा। हालत इनफिराद में क्या माना, यानी पहले से इस खावन के अकद में कोई आजाद औरत नहीं है, और हालत इज्तिमा का क्या माना, पहले से एक आजाद औरत इसके निकाह में मौजूद है। तो आजाद औरत से जब कोई शख्स निकाह करना चाहता है तो हालत इनफिराद में भी कर सकता है और हालत इज्तिमा में भी कर सकता है। तो आजाद औरत महल्ले निकाह है दोनों हालतों में, लेकिन बांदी के हक में ये इनाम आधा रह जाएगा, सिर्फ एक हालत में वो महल्ले निकाह होगी, दूसरी हालत में महल्ले निकाह नहीं, और वो है इनफिराद की हालत। इनफिराद की हालत में यानी जब ये शख्स, ये जो निकाह करने वाला है, इसके अकद में पहले से कोई आजाद औरत नहीं है और बांदी से निकाह करना चाहता है, तो हालत इनफिराद में ये बांदी महल्ले निकाह है, इसे निकाह कर सकता है। लेकिन अगर इस शख्स के निकाह में पहले से एक औरत मौजूद है, अब बांदी से निकाह करना चाहता है, तो यह कौन सी हालत है, ये हालत इज्तिमा, और हालत इज्तिमा के अंदर ये महल्ले निकाह नहीं, इसे निकाह कर ही नहीं सकता, करेगा तो होगा ही नहीं, ये महल्ले निकाह ही नहीं है। तो आजाद औरत की दो हालतें और दोनों में वो महल्ले निकाह है, हालत इनफिराद में भी और हालत इज्तिमा में भी, जबकि बांदी के अंदर तंसीफ हो गई, ये नियामत आधी रह गई कि वो दो हालतों में से सिर्फ एक हालत यानी हालत इनफिराद में तो महल्ले निकाह है, उसे निकाह हो सकता है, हालत इज्तिमा में उससे निकाह नहीं हो सकता, वो महल्ले निकाह है ही नहीं। बात समझ में आ गई जी, ये है अकली दलील। देखिए भाई, वली अन लिर्रिक असरन फी तंसीफ निअमति, और इसलिए क्योंकि गुलामी जो है उसका असर होता है फी तंसीफ निअमति, नियामत के आधा करने में। नस्फ युनस्फ तंसीफन का क्या माना, आधा करना, ये निस्फ से है, निस्फ स्वाद से। لأن للرق أثرا في تنصيف النعمة, इसलिए क्योंकि गुलामी जो है इसका असर होता है नियामत के आधा करने में। على ما نقرره في الطلاق, उस दलील की वजह से जो हम साबित करेंगे तलाक में, आगे चलकर तलाक के अंदर साहिब हिदाया साबित करेंगे, दलील देंगे कि बांदी के हक में तनसीफ होती है, इनाम आधा रह जाता है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं अला मा नुकर्ररुहु फित तलाक इंशा अल्लाह, उस वजह से जो हम साबित करेंगे तलाक के अंदर इंशा अल्लाह ताला। फयसबुतु बिही हिल्लुल महल्लियति फी हालतिल इन्फिरादी, फयसबुतु बिही अय बिर्रिक, ये हाजमीर किसको राजे है, रिक को। फयसबुतु बिही, तो इस गुलामी के जरिए साबित होगा हिल्लुल महल्लियति, उस महल का हलाल होना, यानी वो बांदी हलाल होगी, फी हालत इल इनफिरादी, इनफिराद की हालत में, दूना हालत इल इंजिमामी, न के इंजिमाम की हालत में। मैंने दो हालतें बताई, एक इनफिराद और एक इजतिमा। इजतिमा कह लें या इंजिमाम कह लें, इजतिमा का माना भी इकट्ठे होना, इंजिमाम का माना भी मिल जाना, मिलना भाई, इकट्ठे होना। बात समझ में आ गए? तो दो हालतें, एक हालत इनफिराद और एक हालत इंजिमाम। हालत इनफिराद में तो वो महल्ले निकाह है, हालत इंजिमाम में वो महल्ले निकाह नहीं है। ये माना फिर तर्जमा देख लीजिए, फयसबुतु बिही हिलुल महल्लियति, तो इस महल का हलाल होना साबित होगा गुलामी की वजह से, अकेले होने की हालत में गुलामी की वजह से इस महल का हलाल होना, यानी इस बांदी का महल्ले निकाह होना साबित होगा, फी हालत इल इनफिरादी, अकेले होने की हालत में, दूना हालत इल इंजिमामी, न के मिलने की हालत में। बात समझ में आ गई? और याद रखना इसी हुक्म में है, अगर आजाद और बांदी से कोई शख्स इकट्ठा निकाह करता, जैसे आजाद औरत के ऊपर बांदी लाना मना, इसी तरह आजाद औरत के साथ मिलाकर बांदी से आकद करना, एक ही इजाब और कबूल में दोनों से निकाह करना चाहता है, नहीं भाई, आजाद से हो जाएगा, बांदी से नहीं होगा, क्योंकि हालत इंजिमाम में ये आजाद औरत के साथ जब मिल रही है तो ये महल्ले निकाह ही नहीं है, इससे निकाह हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, वयजूजु तज़व्वुजुल हुर्रति अलैहा, और आजाद औरत का निकाह जायज है, अलैहा उस बांदी पर। अगर एक शख्स के निकाह में पहले से बांदी मौजूद है और अब वो आजाद औरत से निकाह करना चाहता है, अब कर सकता है, क्योंकि अदना के ऊपर किसको ला रहा है, आला को ला रहा है, लिहाजा अब कोई मुमानियत नहीं। तो कहते हैं वयजूजु तज़व्वुजुल हुर्रति अलैहा, और जायज है आजाद औरत से निकाह करना, अलैहा बांदी पर, लिकौलिही अलैहि सलाम, बवजह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान मुबारक के, आपने फरमाया, वतुनकहुल हुर्रतु अलल अमति, और निकाह किया जा सकता है आजाद औरत से, अलल अमति बांदी पर, वली अन्नहा मिनल मुहल्ललाति फी जमीइल हालाति। यहां से अकली दलील भी जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं इसलिए, इधर देखिए, क्योंकि जैसे बांदी मुहल्लला है उसे निकाह की शरीयत ने इजाजत दी है, वो हलाल है, इसी तरह आजाद औरत भी मुहल्लला है, उससे भी शरीयत ने निकाह की इजाजत दी है, लेकिन बांदी मुहल्लला है दो हालतों में से सिर्फ एक हालत में, क्योंकि तंसीफ आ गई गुलामी की वजह से, जबकि आजाद औरत तमाम अहवाल में मुहल्लला है, क्योंकि यहां पर गुलामी मौजूद नहीं, कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं जो तंसीफ कर दे। बात समझ में आ गई? जो इस इनाम को क्या कर दे, आधा कर दे, यहां पर ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वली अन्नहा मिनल मुहल्ललाति फी जमीइल हालात, इसलिए क्योंकि ये जो आजाद औरत है ये मुहल्ललात में से है, यानी इनके साथ निकाह हलाल है, फी जमीइल हालाति, तमाम हालात के अंदर, यानी चाहे इनफिराद वाली हालत हो चाहे इंजमाम वाली, इज़ला मुनस्सिफ फी हक़िहा, इसलिए क्योंकि इस आजाद औरत के हक में कोई मुनस्सिफ नहीं है, कोई चीज तंसीफ करने वाली, कोई चीज हुक्म को आधा करने वाली यहां मौजूद नहीं है भाई। आगे देखिए, फइन तज़व्वज अमतन अला हुर्रतिन फी इद्दतिन मिन तलाक़िन बाइन लम यजुज इंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाह व यजुज इंदहुमा। सूरत मसला ये, आपने मसला पढ़ लिया कि कोई शख्स जो है उसके निकाह में अगर आजाद औरत मौजूद है तो वो उसके ऊपर बांदी को नहीं ला सकता, बांदी से निकाह नहीं कर सकता। अब एक शख्स है उसके आकद में एक आजाद औरत मौजूद थी, वो इस आजाद औरत को तलाक दे देता है, तलाक बाइन बई, और अब इस इद्दत के अंदर अंदर ही वो बांदी के साथ निकाह करना चाहता है। तो याद रखो इसमें साहिबैन और इमाम साहिब का इख्तिलाफ है। इमाम साहिब फरमाते हैं कि इस पहली औरत की इद्दत के दौरान भी ये इस बांदी से निकाह नहीं कर सकता भाई। वजह ये क्योंकि तलाक के बाद इद्दत के अंदर भी निकाह के कई अहकाम बाकी रहते हैं। यह इद्दत का नफाका भी किसको देना पड़ता है, खावंद को। इस इद्दत के दौरान खावंद इस औरत को घर से बाहर निकलने से मना भी कर सकता है, और इस इद्दत के दौरान अगर यह औरत बच्चे को जन्म देगी तो वो भी इसी खावंद का शुमार होगा। तो मालूम हुआ तलाक बाइन देने के बावजूद अभी भी निकाह के असरात बाकी हैं जब तक इद्दत पूरी नहीं हो जाती। लिहाजा अब अगर ये बांदी से निकाह करेगा तो गोया इसने आजाद औरत के ऊपर बांदी से निकाह कर लिया और उससे तो शरीयत ने मना किया है। हदीस में मना आया है आजाद औरत पर बांदी से निकाह नहीं किया जा सकता, तो ये अब इद्दत के अंदर बांदी से निकाह नहीं कर सकता, इद्दत जब गुजर जाए फिर बांदी से निकाह कर ले। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि इद्दत के अंदर भी बांदी से निकाह कर सकता है, इसलिए क्योंकि पहली बीवी को यह तलाक बाइन दे चुका है। अब अगर यह बांदी के साथ निकाह करेगा तो यूं नहीं कहा जाएगा कि यह आजाद औरत पर बांदी से निकाह कर रहा है, क्योंकि आजाद औरत को तो वह तलाक दे चुका है। तो अब बांदी से निकाह करेगा तो यह आजाद औरत पर बांदी से निकाह नहीं कहलाएगा, और आजाद औरत के ऊपर बांदी को लाना यही तो हराम था भाई, आजाद औरतों के ऊपर बांदी को लाना ही तो हराम था। लेकिन यहां पर अब वो तलाके बाइन दे चुका है, अब बांदी से निकाह करेगा तो आजाद औरत के ऊपर ये बांदी से निकाह नहीं कहलाएगा, लिहाजा ये निकाह जायज है भाई। तो कहते हैं फइन तज़व्वजा अमतन अला हुर्रतिन फी इद्दतिन मिन तलाकिन बाइनिन, अगर निकाह किए किसी बांदी से आजाद औरत पर फी इद्दतिन मिन तलाकिन बाइनिन, उस औरत की तलाक बाइन के अंदर इद्दत के अंदर, लम यजुज इंदा अबी हनीफत रहिमहुल्लाह, तो ये इमाम साहिब के नजदीक जायज नहीं। व यजूज इंदहुमा, और साहिबैन के नजदीक जायज है। लिअन्ना हादा, साहिबैन के आगे दलील आ गई। याद रखो साहिबे हिदाया का तरीका यह है कि हमारे अइम्मा के दरमियान जब किसी मसले में इख्तिलाफ आ जाए तो जो राजह मजहब होता है उसको पहले जिक्र फरमाते हैं। किसको? राजह। तो देखो यहां पर भी इमाम साहिब का मजहब राजह है, इसलिए वो मतन के अंदर पहले मस्कूर है भाई। और जब दलाइल बयान फरमाते हैं तो जो मजहब राजह होता है उसके दलाइल सबसे आखिर में जिक्र फरमाते हैं, दलाइल सबसे आखिर में जिक्र फरमाते हैं, ताकि ये उस मजहब के दलाइल भी हो जाएं और बाकी मजहबों के लिए जवाब भी बन जाए भाई
जी।
बाकी मजहब की दलीलों का जवाब भी बन जाए। तो क्या तरीका साहिब हिदायत का? जो मजहब राजे वो पहले लाते हैं, जो मरजूह है वो बाद में लाते हैं, और दलाइल के अंदर मरजूह के दलाइल पहले और राजे के दलाइल बाद में लाते हैं। तो यहां पर भी देखो मतन के अंदर पहले इमाम साहिब का मजहब जिक्र है क्योंकि वो मजहब राजे है, और साहिबैन का मजहब बाद में जिक्र है। अब जब दलाइल की बारी आई तो पहले साहिबैन की दलाइल जिक्र फरमा रहे हैं, यानी वो जो मरजूह मजहब है उसके दलाइल भाई। देखिए कहते हैं लिअन्ना हादा लैसा बितज़व्वुजिन अलैहा, इसलिए क्योंकि ये जो निकाह करेगा बांदी से इद्दत के अंदर, लैसा बितज़व्वुजिन अलैहा, ये उस आजाद औरत पर निकाह नहीं है
जी।
इसको यूं नहीं कहेंगे कि ये आजाद औरत पर निकाह कर रहा है क्योंकि उसको तो वो तलाक दे चुका है। वह हुवल मुहर्रिमु, और वही तो हराम करने वाला था। तो आजाद औरत के ऊपर निकाह करना यही तो हराम करने वाला था बांदी से निकाह को, आजाद औरत के ऊपर निकाह करना यही हराम कर रहा था बांदी से निकाह को, और यह चीज तो यहां है ही नहीं क्योंकि इस औरत को यह तलाक दे चुका है। यह माना है लिअन्ना हादा लैसा बितज़व्वुजिन अलैहा, और यह जो है उस आजाद औरत पर निकाह करना नहीं है। वह हुवल मुहर्रिमु, और यह आजाद औरत पर निकाह यही तो हराम करने वाला था और वो यहां पर नहीं है। वलिहादा, साहिबैन फरमाते हैं कि हमारे मजहब की ताईद एक और मसले से भी होती है कि कोई शख्स अगर कसम खा ले और अपनी बीवी से कहे कि वल्लाह मैं तुम्हारे ऊपर किसी और औरत से निकाह नहीं करूंगा
जी।
एक शख्स अपनी बीवी के सामने कसम उठाकर कह देता है कि वल्लाह मैं तुम्हारे ऊपर किसी और औरत से निकाह नहीं करूंगा, फिर यह शख्स इस औरत को तलाक बाइन दे देता है और फिर किसी और औरत से निकाह कर लेता है इद्दत के अंदर अंदर, तो बिल इत्तेफाक यह शख्स हानिस नहीं। साहिबैन के नजदीक भी यह शख्स हानिस नहीं क्योंकि पहली औरत को वह तलाक दे चुका है और यह उस औरत के ऊपर निकाह नहीं कहलाएगा यह निकाह भाई, और इमाम साहब के नजदीक भी यह शख्स हानिस नहीं होगा, यह पहले निकाह पर निकाह नहीं कहलाएगा। तो साहिबैन फरमाते हैं देखा इस मसले से भी हमारी ताइद होती है
जी।
इस मसले के अंदर इमाम साहब भी हमारी ताइद कर रहे हैं, पहली बीवी को तलाक बाइन देने के बाद इद्दत के अंदर किसी और औरत से निकाह करेगा तो यह शख्स हानिस नहीं होगा, हालांकि इसने तो कसम उठाई थी कि मैं तुम्हारे ऊपर और निकाह नहीं करूंगा, तो इसको तो हानिस होना चाहिए था, लेकिन यहां इमाम साहब भी हमारी ताइद फरमा रहे हैं कि यह शख्स हानिस नहीं होगा। देखिए भाई, कहते हैं वली हादा लव हलफा, और इसी वजह से अगर किसी शख्स ने कसम उठा ली, ला यतजव्वज अलैहा, बीवी से कहता है कि वो उसके ऊपर निकाह नहीं करेगा, लम यहनस बिहाजा, तो वो इससे हानिस नहीं होगा, यानी उसकी कसम नहीं टूटेगी। तो कहते हैं लम यहनस बिहाजा, वो इससे हानिस नहीं होगा। वली अबी हनीफा तरहिमहुल्ला, और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्न निकाह हल हुर्रति बाकी मिन वजहिन, कि आजाद औरत का निकाह भी बाज एतबार से बाकी है, लिबका इबाजिल अहकामी, इसलिए क्योंकि बाज अहकाम बाकी हैं, पहले निकाह के बाज अहकाम अभी भी बाकी हैं, कि इद्दत के अंदर का नफका कौन देगा, खावंद देगा, और खावंद इस मुअत्तदा को घर से निकलने से भी मना कर सकता है, और नीज इस मुअत्तदा ने अगर किसी बच्चे को जन्म दिया तो वो भी इस खावंद का शुमार होगा। तो मालूम है निकाह के अहकाम अभी भी कुछ बाकी हैं, जब कुछ निकाह के अहकाम बाकी हैं तो लिहाजा एहतियात इसी में है कि मना भी बाकी होनी चाहिए। हदीस में मना आया था कि आजाद औरत पर बांदी से निकाह नहीं कर सकते, तो वो मना भी बाकी होनी चाहिए। जब निकाह के कुछ असरात बाकी तो ये वाली मना भी बाकी होनी चाहिए, एहतियात इसी में है भाई। तो इमाम साहब फरमाते हैं अन्ना निकाह हल हुर्रति बाकी में हुआ, जिनके आजाद औरत का निकाह बाज एतबार से बाकी है, लिबका इबाजिल अहकामी, इस वजह से कि निकाह के बाज अहकाम बाकी हैं, फयब कलमन हो एहतियातन, तो बतौर एहतियात के मना भी बाकी रहेगी, बिखिलाफ इलयमीनी, बखिलाफ कसम के, लिअन्न अलमकसूद अल्लायुदखिला गैरहा फी कस्मिहा। भाई साहिबैन ने इस मसले को कियास किया था कसम पर, और कसम के अंदर तो इमाम साहब भी फरमाते थे कि तलाक बाइन के अंदर किसी और औरत से निकाह करेगा तो वह शख्स हानिस नहीं, हानिस नहीं, तो उसका भी जवाब दे रहे हैं कि भाई कसम के अंदर कसम खाने वाले का मकसूद यह था कि जब उसने यह कहा कि वल्लाह मैं तुम्हारे ऊपर किसी और औरत से निकाह नहीं करूंगा, मतलब यह था कि तुम्हारी जो बारी है उसके अंदर मैं किसी और औरत को दाखिल नहीं करूंगा। भाई देखो ना, शरीयत ने चार तक निकाह की इजाजत दी है, लेकिन जरूरी है कि खावन आदल करे उनके दरमियान, इंसाफ करे और उनके दरमियान तकसीम करे रातों को, यानी अगर एक औरत के पास एक रात गुजारता है तो दूसरी के पास भी एक रात गुजारना पड़ेगी, तीसरी के पास भी एक रात गुजारना पड़ेगी, चौथी के पास भी एक रात गुजारना पड़ेगी, या पहली के पास दो रातें गुजारता है तो बाकी सबके पास भी दो दो रातें, अगर पहली के पास पूरा हफ्ता गुजारता है तो बाकी सबके पास भी पूरा पूरा हफ्ता गुजारना पड़ेगा, यानी आदल और इंसाफ के साथ होना चाहिए। और यह याद रखना, यह रातें तकसीम करने की बात हो रही है, रातें बराबरी के साथ तकसीम होंगी, सोहबत की बात नहीं हो रही। सोहबत खावंद की जहां ख्वाहिश हो वहीं कर सकता है, उसमें तकसीम जरूरी नहीं। हां, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि किसी औरत को बिल्कुल मुअल्लक ही छोड़ दे, उससे सोहबत करे ही नहीं, नहीं ऐसा भी सही नहीं, लेकिन बहरहाल बतलाना यहां मकसद यह है कि सोहबत के अंदर बराबरी जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई? तो लिहाजा खावंद के लिए बीवियों में अदल जरूरी है। तो ये जो कसम खाने वाला था, इसका मकसद ये था कि जब उसने कहा वल्लाह मैं तुम्हारे ऊपर निकाह नहीं करूंगा, तो मतलब ये था कि मैं तुम्हारी बारी में किसी और औरत को दाखिल नहीं करूंगा, यानी इस वक्त तो सारी रातें तुम्हारा हिस्सा हैं, कोई औरत तुम्हारे साथ उन रातों में शरीक नहीं, लेकिन अगर और औरत आएगी तो उसको भी हिस्सा देना पड़ेगा, मैं तुम्हारा हिस्सा और औरत को नहीं दूंगा, यह मकसद था। और जब यह इस पहली औरत को तलाक दे चुका है तो अब ये उसके हिस्से पर किसी और औरत को दाखिल नहीं कर रहा, लिहाजा इसलिए वो हानिस नहीं होगा। और नीज याद रखो, कसम का दारोमदार उर्फ पर होता है, उर्फ में एक बात का जो माना लिया जाता है कसम में भी वही माना मुराद होगा, कसम में भी वही माना मुराद होगा। और उर्फ के अंदर याद रखो, एक शख्स के निकाह में एक औरत हो और फिर वो दूसरी औरत से निकाह करे तो कहते हैं इसने पहली बीवी पर दूसरा निकाह कर लिया, लेकिन अगर पहली बीवी को वो तलाके बाइन दे दे तो इद्दत के अंदर भी अगर ये शख्स निकाह कर ले तो कोई ये नहीं कहता कि ये पहली बीवी के ऊपर दूसरी बीवी ले आया, कोई भी ये नहीं कहता, उर्फ में इसको पहली बीवी पर निकाह नहीं समझा जाता। तो यहां उर्फ के अंदर भी तलाके बाइन के अंदर जो निकाह करता है वो पहली बीवी पर निकाह नहीं समझा जाता, इसलिए भी ये शख्स हानिस नहीं होगा। बात समझ में आ गई? कहते हैं बेखिलाफ इलियमीनी, बेखिलाफ कसम के, लिए अन्नल मकसूद अल्लाह युद खिला गई रहा फी कसमिहा, क्योंकि कसम के जरिए कसम खाने वाले का मकसूद यह होता है कि अल्लाह युद खिला गए रहा कि वो किसी और औरत को दाखिल नहीं करेगा, फी कसमिहा इस औरत के हिस्से में, कसम बे काफ के फतहा के साथ है यह हिस्से और बारी को कहते हैं कि वो इस औरत की बारी पर किसी और औरत को दाखिल नहीं करेगा। आगे देखिए वलिल हुर्रि अन यतज़व्वज अरबअन मिनल हराइरि वल इमाइ वलैसा लहू अन यतज़व्वज अक्सर मिन ज़ालिक। यहां से साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि आजाद मर्द जो है ज्यादा से ज्यादा चार औरतों से निकाह कर सकता है, यानी बयक वक्त वो अपने निकाह में चार औरतें रख सकता है। अगर किसी और से निकाह करना चाहता है तो इन चार में से एक को छोड़ना पड़ेगा, और फिर छोड़ते ही फौरन उससे अगली से निकाह नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि पहली की इद्दत अभी चल रही है तो गोया मिन वजह अभी भी निकाह बाकी है, लिहाजा इद्दत जब गुजर जाएगी फिर उसके बाद वो अब उस अगली औरत से निकाह कर सकता है। और फिर ये चार औरतें जिनसे वो निकाह करना चाहता है, चाहे चारों आजाद हों, चाहे चारों क्या हों, बांदियां हों, या कुछ बांदियां हों और कुछ आजाद हों, जैसे भी निकाह करना चाहे कर सकता है, लेकिन बस यह है आजाद औरत के ऊपर बांदी नहीं ला सकता, हां बांदी के ऊपर आजाद औरत को ला सकता है। तो कहते हैं वलील हुर्री और आजाद आदमी के लिए जायज है अन यतज़व्वज अरबअन मिनल हराइरि वल इमाइ कि वो निकाह कर सकता है चार औरतों से, मिनल हराइरि आजाद औरतों में से, वल इमाइ और बांदियों में से, वलैसा लहू अन यतज़व्वज अक्सर मिन ज़ालिका और उसके लिए यह जायज नहीं है कि इससे ज्यादा निकाह करे, लिकौलिही तआला अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाइ बस तुम लोग निकाह करो, मा ताबा लकुम वो जो तुम्हें पसंद हो, वो जो तुम्हें अच्छी लगे, मीनन निसा यानी औरतें, याद रखो ये मीनन निसा बयान है मां का, मां का, तो लिहाजा ये मां की जगह अन्निसा का लफ्ज लाकर तर्जमा करें, फन के हो मा ताबा लकुम मीनन निसाई बस तुम लोग निकाह करो उन औरतों से जो तुम्हें पसंद हो, मसना व सुलासा व रुबा दो दो और तीन तीन और व रुबा और चार चार। मसना का क्या माना, दो दो, दो मरतबा कहना है दो दो, सुलासा का क्या माना तीन तीन, दो मरतबा तीन कहना है, और रुबा का क्या माना चार चार, भाई दो दफा चार लफ्ज बोलना है। तो तुम लोग निकाह करो उन औरतों से जो तुम्हें पसंद हो, दो दो और तीन तीन और चार चार से। और नीस आगे अल्लाह फरमाते हैं फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदतन, अगर तुम्हें यह खौफ हो कि तुम अदल नहीं कर सकोगे तो एक ही, यानी फिर एक से ही निकाह करो। भाई मालूम हुआ एक से जायद निकाह की इजाजत है लेकिन उनमें अदल करना पड़ेगा, इंसाफ करना पड़ेगा। भाई तो देखा यहां पर आदत बाकायदा जिक्र है, दो दो तीन तीन और चार चार, मालूम हुआ चार से ज्यादा औरतें बयक वक्त कोई शख्स निकाह में नहीं रख सकता। तो कहते हैं व तनसीस अलल अददी यमनउ ज़ियादता अलैही, नस सयुनस्सिसु तनसीस का माना है तसरीह करना, यानी साफ लफ्जों में जिक्र करना, व तनसीस अलल अददी और अदद पर तसरीह करना, यानी आयत के अंदर बाकायदा सराहतन अदद जिक्र हैं, दो दो तीन तीन और चार चार अदद जिक्र हैं। तो कहते हैं व तनसीस अलल अददी और आयत के अंदर जो अदद पर तसरीह की गई है, यमनउ ज़ियादता अलैही ये मना करती है इस पर ज्यादती से कि इससे ज्यादा की इजाजत नहीं है। भाई तो अहले सुन्नत वल जमात एक शख्स बयक वक्त चार से ज्यादा निकाह नहीं कर सकता। भाई जबकि रवाफिज यानी शिया और बाज चंद एक फुकाहा उनके नजदीक एक शख्स नौ तक निकाह कर सकता है, नौ तक, मसना व सुलासा व रुबा, मसना दो दो, सुलासा तीन तीन, तो दो और तीन कितने हो गए पांच, और रुबा चार चार, तो चार को जमा किया दो और तीन पांच और चार नौ, तो वो कहते हैं नौ तक निकाह कर सकता है। लेकिन मैंने बताया ये एक दो फुकाहा है सिर्फ, और बाकी शिया का मजहब यह है कि नौ तक इंसान निकाह कर सकता है। भाई रवाफिज वगैरह ने इनको जमा किया, हम कहते हैं नहीं, इनको जमा नहीं किया जाएगा। मसलन मैं जैद को अगर 9 रुपए देना चाहता हूं तो आपको भेजता हूं पैसे देकर, तो मैं यूं नहीं कहूंगा कि जैद को 2 रुपए दे देना और 3 रुपए दे देना और 4 रुपए दे देना। मैं सीधा सीधा कहूंगा जैद को 9 रुपए दे देना, वो आदत जिक्र करूंगा। तो लिहाजा 9 का आदत यहां बयान करना मकसद होता तो बाकायदा 9 का आदत लाया जाता आयत के अंदर। भाई बात समझ में आ गई। जबकि खवारिज कहते थे कि 18 तक निकाह इंसान कर सकता है। वो कहते थे मसना का माना है दो दो, दो का लफ्ज दो दफा बोलना है, तो दो और दो कितने हो गए 4, और सुलासा का माना है तीन तीन, तो 3 और 3 6 हो गए, तो 4 और 6 10 हो गए, और रुबा का माना है 4 4 यानी 8, तो 10 और 8 18 निकाह। लेकिन बहरहाल अहले सुन्नत के नजदीक एक वक्त में 4 से ज्यादा औरतें कोई शख्स निकाह में नहीं रख सकता। आगे देखिए, वकाल शाफी रहमहुल्लाह ला यतज़व्वजु इल्ला अमतन वाहिदतन, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि निकाह नहीं कर सकता मगर एक बांदी से। इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि आजाद औरतें तो 4 एक शख्स निकाह में रख सकता है, लेकिन बांदियां जो है अगर उनसे भी निकाह करना पड़ता है तो वो एक से ज्यादा नहीं रख सकता। बांदी एक ही हो सकती है, बांदी एक ही हो सकती है। लिअन्नहु जरूरी युनाइंदहु, इसलिए क्योंकि बांदी से जो निकाह है ये उनके नजदीक जरूरत की बिना पर है, और जो चीज जरूरत की वजह से साबित होती है वो बकदरे जरूरत ही साबित होगी, और जरूरत एक बांदी से पूरी हो गई, लिहाजा एक से जायद की भी इजाजत नहीं। जैसे देखो खिंजीर का खाना मना है जी। लेकिन अगर कोई शख्स मौत तक पहुंच गया, मरने वाला है और कोई खाने की चीज नहीं, मसलन कुफार की कैद में है और उन्होंने सिर्फ खिंजीर का गोश्त रखा है उसके लिए खाने के लिए, तो याद रखो अब जब ये मौत के करीब पहुंच गया तो इस सूरत में ये गोश्त भी इसके लिए हलाल हो गया, ये इसको खा सकता है। और ये गोश्त हलाल क्यों हुआ? जरूरत की वजह से, क्योंकि ये मरने वाला है, इसके सिवा और कोई चारा ही नहीं है। और जो चीज जरूरत की वजह से साबित हो वह कदरे जरूरत साबित होगी। अब इसका यह माना नहीं कि यह जितना मर्जी इसमें से खाना चाहे खा ले, नहीं, बस इतनी थोड़ी सी मिकदार खा सकता है जिससे इसकी जिंदगी बच जाए, जिससे यह मरे ना। तो जरूरत से जो चीज साबित होती है वो बकदरे जरूरत साबित होती है, तो लिहाजा एक दो लुकमों से जब इसकी जरूरत पूरी हो गई तो अब मजीद खाने की इजाजत नहीं। यहां बांदियों के अंदर भी जो निकाह की इजाजत है वो जरूरत की बिना पर है, तो जब एक मुसलमान बांदी से जरूरत पूरी हो गई तो अब मजीद के साथ निकाह की इजाजत नहीं है। यह माना है लिअन्नहु जरूरी युनाइंदहु, इसलिए क्योंकि बांदी से जो निकाह है यह जरूरत की बिना पर है। इंदहु इमाम शाफी रहमहुल्लाह के नजदीक, वल हुज्जतु अलैहि मा तलौना, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह के खिलाफ दलील जो है वो आयत है तलौना जो हमने तिलावत कर दी, अभी जो हमने ऊपर तिलावत की, फन कि हु मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, और इसके अंदर निसा का लफ्ज आया कि औरतों से निकाह करो, और बांदियां भी तो औरतें हैं, बांदियां भी क्या हैं? औरतें। तो निसा का लफ्ज बांदियों को भी शामिल है और आजाद औरतों को भी शामिल है, और 4 की इजाजत दी जा रही है। कहते हैं वल हुज्जतु अलैहि मा तलौना, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह के खिलाफ दलील वो आयत है जो हमने तिलावत की, इदिल अमतुल मनकूहतु यंतजिमु हस्मुन निसाई, इसलिए क्योंकि मनकूहा बांदी जो है यंतजिमुहा उसको शामिल है इस्मुन निसाई, निसा का इस्म, निसा का लफ्ज जो है वो बांदियों को भी शामिल है। कमाफिस जिहारी, जैसे जिहार के अंदर है, जिहार याद रखो आगे साहिब हिदायत भी बयान फरमाएंगे, जिहार यह है कि कोई शख्स अपनी बीवी को अपनी मां के साथ तशबीह दे दे कि तू मेरे लिए ऐसे ही मुझ पर हराम है जैसे मेरी मां मुझ पर हराम है। बात समझ में आ गई? तो जिहार ये उसने निहायत ही गलत बात कही, लिहाजा शरीयत ने उस औरत को उस पर हराम कर दिया, इल्ला ये कि उसको कफारा देना पड़ेगा जी। क्या करना पड़ेगा? कफारा जिहार देना पड़ेगा, फिर ही अब वो औरत उसके लिए हलाल होगी, वरना और कोई सूरत नहीं औरत के हलाल होने की। तो आयत जिहार के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लदीन युज़ाहिरून मिन निसाइहिम, और वो लोग जो जिहार कर लेते हैं अपनी बीवियों से, तो आयत जिहार के अंदर भी मिन निसाइहिम निसा का लफ्ज आया है, और जिहार का हुक्म याद रखो कोई शख्स अपनी आजाद मनकूहा से जिहार करे तब भी यही हुक्म, कोई शख्स अपनी मनकूहा बांदी से जिहार करे तब भी यही हुक्म है। तो आयत जिहार के अंदर निसा का लफ्ज है, और उस निसा के अंदर आजाद औरतें भी दाखिल और बांदियां भी दाखिल हैं। मालूम हुआ बांदियों का भी वही हुक्म है जो आजाद औरतों का है, और आजाद औरतों में से तो चार के साथ निकाह जायज, तो बांदियों से भी चार के साथ निकाह जायज होगा। बात समझ में आ गई। दलील क्या हुई? माताब अलकुम मिनन निसा, यहां भी निसा का लफ्ज आया। इसी तरह जिहार के अंदर भी जिहार का हुक्म बयान हो रहा है तो वहां निसा का लफ्ज आया, और जिहार का हुक्म जैसे आजाद औरत के लिए है वैसे ही मनकूहा बांदी के लिए भी है। मालूम हुआ वहां भी निसा के लफ्ज में बांदियां दाखिल हैं, यहां भी निसा के लफ्ज में बांदियां दाखिल हैं। ये माना है इजिल अमतुल मनकूहतु यंतजिमु हस्मुन निसाई, इसलिए क्योंकि मनकूहा बांदी उसको शामिल है निसा का लफ्ज, कमा फिज जिहारी, जैसे कि जिहार के अंदर है। आगे देखिए, वला यजूजु लिल अब्द अन यतज़व्वजा अक्सरा मिन इस्नैनी, और जायज नहीं है गुलाम के लिए कि वो दो से ज्यादा निकाह करे। कोई आजाद आदमी निकाह करता है तो वो चार निकाह कर सकता है, और गुलाम गुलाम है तो वहां तंसीफ आ जाएगी इस नेमत के अंदर, तो गुलाम एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा दो औरतों को निकाह में रख सकता है। ये माना है वला यजूजु लिल अब्द अन यतज़व्वजा अक्सरा मिन इस्नैन, और गुलाम के लिए जायज नहीं है कि वो दो से ज्यादा निकाह करे। वकाल मालिक रहमहुल्लाह, और इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं यजूजु जायज है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जैसे आजाद आदमी चार निकाह कर सकता है, गुलाम भी चार निकाह कर सकता है। वजह यह कि वो फरमाते हैं निकाह की तख्सीस है इंसान के साथ, तो लिहाजा ये जो गुलाम को भी निकाह की इजाजत मिली है ये इंसान होने के नाते इसको इजाजत मिली है, और इंसान होने के अंदर ये और आजाद आदमी बराबर हैं। जैसे आजाद आदमी एक इंसान है, एक आदमी है, ये भी क्या है, एक इंसान है, एक आदमी है, और आदमी को शरीयत ने चार निकाहों की इजाजत दी है, तो ये भी आदमी है गुलाम, इसको भी कितने निकाहों की इजाजत होगी, चार निकाह की, और यहां गुलामी का कोई असर नहीं होगा। चुनाचे वो फरमाते हैं गुलाम को, इधर देखिए, गुलाम को ये जो निकाह की इजाजत दी है शरीयत ने, किस वजह से, इसके आदमी होने की वजह से। ये क्या है, इंसान है, तो ये आदमी होने की वजह से इजाजत दी है, इसीलिए वो फरमाते हैं कि गुलाम अपने निकाह में आजाद है, जहां चाहे निकाह करे, आका से पूछने की कोई जरूरत नहीं। इंदल अहनाफ, गुलाम आका की इजाजत के बगैर निकाह नहीं कर सकता। गुलाम आका की इजाजत के बगैर निकाह नहीं कर सकता, लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि गुलाम इस सिलसिले में आजाद है, उसे आका से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं, वो जहां चाहे निकाह कर सकता है और चार निकाह कर सकता है, क्योंकि उसको ये जो इजाजत दी है शरीयत ने आदमी होने के एतबार से दी है, और आदमी होने में ये और आजाद क्या है, बराबर हैं भाई। तो कहते हैं वकाल मालिक रहमहुल्लाह यजूज, और इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं जायज है गुलाम के लिए ये कि वो दो से ज्यादा निकाह कर सकता है, यानी चार कर सकता है। लिअन्नहु फी हक़ निकाह भी मंजिलतिल हुर्र इंदहू, इसलिए क्योंकि ये गुलाम जो है ये निकाह के हक में आजाद आदमी के दर्जे में है। इंदहू, इमाम मालिक रहमहुल्लाह के नजदीक। हत्ता मलकहु बिगैर इज़्निल मौला, यहां तक ये गुलाम मालिक होता है निकाह का, बगैर इज़्निल मौला, आका की इजाजत के बगैर ही, आका की इजाजत के बगैर ही ये निकाह कर सकता है। वलना, और हमारी दलील ये है कि अन्नर्रिक मुनस्सिफ़ुन, कि जो गुलामी है ये तंसीफ कर देती है, ये अशरी अहकाम को आधा कर देती है। फयतज़व्वजुल अब्दुस्नतैनी, लिहाजा गुलाम जो है वो दो औरतों से निकाह कर सकता है। वलहुर्रु अरबअन, और आजाद जो है वो चार निकाह कर सकता है। इजहारन लिशरफिल हुर्रियति, शरफ हुर्रियत के इजहार के लिए, भाई आजादी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा एजाज है, लिहाजा आजादी के शरफ के इजहार के लिए, आजादी के एजाज को जाहिर करने के लिए आजाद आदमी चार निकाह करेगा भाई, और गुलाम के हक में तंसीफ हो जाएगी, उसको चूंकि आजादी का शरफ हासिल नहीं है लिहाजा वो चार नहीं कर सकता, वो दो निकाह कर सकता है। ये माना है कि अवल हुर्रु अरबान, और आजाद जो है वो चार निकाह कर सकता है। इजहार अनली शरफिल हुर्रियति, आजादी के एजाज को जाहिर करने के लिए, आजादी के शरफ को जाहिर करने के लिए, क्योंकि आजादी बहुत बड़ा शरफ है जो अल्लाह ने आजाद को नसीब किया है, तो वो चार निकाह तक की उसको इजाजत होगी, लेकिन गुलाम को इसकी इजाजत नहीं होगी। फइन तल्लकल हुर्रु इहदल अरबई तलाकम बाइनन, एक शख्स एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा चार निकाह कर सकता है। अगर वो कोई और मजीद निकाह करना चाहता है तो इन चार में से एक को तलाक देना पड़ेगी, और फिर जब इद्दत गुजर जाएगी फिर वो अगली औरत से निकाह कर सकता है। जब तक ये इद्दत के अंदर है उस औरत से ये शख्स निकाह नहीं कर सकता। तो याद रखो ये वो मसला है जिसमें मर्द को भी इद्दत गुजारना पड़ेगी, इद्दत का इंतजार करना पड़ेगा। चार औरतें निकाह में थी, एक को तलाक दे दी, तो जब तक इस औरत की इद्दत है ये मर्द भी गोया इद्दत में चल रहा है, जब तक इद्दत पूरी नहीं ये अगला निकाह नहीं। जैसे औरत जब तक इद्दत में होती अगला निकाह नहीं कर सकती, ये मर्द भी गोया इद्दत में है अगला निकाह नहीं कर सकता। ये उसी तरह जो पीछे मसला आया था एक शख्स दो बहनों को निकाह में जमा नहीं कर सकता, अब अगर एक बहन को तलाक बाइन दे दे तो जब तक ये बहन इद्दत के अंदर है खावंद अगली बहन से निकाह नहीं कर सकता, तो गोया वहां भी खावंद को इद्दत गुजारना पड़ती है फिर ही वो अगली बहन से निकाह कर सकता है। तो कहते हैं फइन तलकल हुर इहदल अरबाई तलाकम बाइनन, और अगर तलाक दे दी किसी आजाद आदमी ने इहदल अरबाई अपनी चार बीवियों में से एक को तलाकम बाइनन, तलाक बाइन दे दी चार बीवियों में से एक को तलाक बाइन दे दी, लम यजूस लहू अन यतज़व्वज राबिअतन, तो उसके लिए जायज नहीं है कि वो चौथी से निकाह कर ले, हत्ता तनक़ज़िया इद्दतुहा, यहां तक कि उस मुतल्लका की इद्दत पूरी हो जाए, यहां तक कि उसकी इद्दत पूरी हो जाए, जब उसकी इद्दत पूरी होगी फिर आगे निकाह कर सकता है। वफीह खिलाफ शाफिई रहिमहुल्लाह, और इसके अंदर इख्तिलाफ है इमाम शाफी रहमतुल्लाह का, वो फरमाते हैं कि भाई तलाक बाइन से निकाह पूरी तरह टूट चुका है लिहाजा अब ये अगला निकाह कर सकता है। कहते हैं वह हुआ नजीर निकाह उख्ती फी इद्दत उख्ती, और ये मसला नजीर है निकाह उख्ती फी इद्दत उख्ती, वो जो बहन के साथ निकाह का मसला है फी इद्दत उख्ती बहन की इद्दत में, एक बहन की इद्दत के अंदर भी दूसरी बहन के साथ निकाह नहीं हो सकता, ये मसला तफसील से पीछे गुजर चुका है। आपने पढ़ा एक शख्स दो बहनों को निकाह में जमा नहीं कर सकता, अगर एक बहन निकाह में है और वह अब दूसरी बहन से निकाह करना चाहता है तो पहले पहली बहन को तलाक देना पड़ेगी और फिर जब इद्दत गुजर जाएगी फिर अगली बहन से निकाह कर सकता है। तो साहिब हिदायत फरमा रहे हैं कि ये जो मसला अभी जिक्र हुआ कि किसी शख्स के निकाह में चार बीवियां हैं, वो एक बीवी को तलाक देकर एक और औरत से निकाह करना चाहता है, तो हमारे नजदीक तलाक बाइन देते ही फौरन अगला निकाह नहीं कर सकता बल्कि इद्दत के बाद निकाह करेगा, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तलाक देते ही अगला निकाह कर सकता है, तलाक बाइन, तलाक बाइन देते ही अगला निकाह कर सकता है। तो यह मसला नजीर है उस मसले की, वो जो एक बहन की इद्दत में दूसरी बहन से निकाह का मसला गुजरा था यह उसी की नजीर है। बात समझ में आ गई, यानी जैसे वहां इमाम शाफी रहमतुल्लाह इख्तिलाफ फरमाते थे उसी तरह यहां भी इख्तिलाफ फरमाते हैं, और जैसे वहां पर जो दलील और इल्लत थी वही दलील और इल्लत यहां पर भी है। वो फरमाते हैं कि निकाह पूरे तौर पर टूट चुका लिहाजा अगली बहन से निकाह कर सकता है, यहां भी चौथी से को तलाक बाइन दे दी निकाह पूरे तौर पर टूट चुका लिहाजा अगली औरत से निकाह कर सकता है, जबकि हमारे नजदीक अभी भी निकाह के असरात हैं लिहाजा अगली औरत से अभी निकाह नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई हादा हुल मराम, अल्लाह आलम बिहकीकतिल कलाम।